ओम शांति। परसों की मुरली में सबसे पावरफुल पॉइंट कौन सी थी याद करो। पहुंचो परसों से हम बाप दादा आए थे, मुरली चली थी, संतुष्टता से शुरू हुई थी। आई याद कुछ? बोलो अभी। सबसे पावरफुल पॉइंट दृढ़ता हमारा जन्म सिद्धि का। दृढ़ता का अर्थ होता है, दृढ़ता एक लाइन में बताओ, दृढ़ता अर्थात करना ही है, ये दृढ़ता की लाइन है। बोलो और बोलो किसको ख्याल आया। अष्ट रत्नों के लिए एक पॉइंट थी मुरली में। देखो मुरली में सब तरह की पॉइंट आती हैं। शुरू में स्वमान, फिर बहुत सुंदर गहरी पावरफुल पॉइंट। मैंने उसको कहा अष्ट रत्नों के लिए एक पॉइंट थी, वही कर सकते हैं वो काम, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सभी नहीं करेंगे। वो थे चारों सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी। बहुत बड़ा विषय है ज्ञान। हम दूसरों को देते हैं, बाबा के सभी बच्चे ज्ञान देते हैं दूसरों को, पर जिसके पास जितनी सत्य ज्ञान की अथॉरिटी होती है उतना ही दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। ज्ञान किस किस चीज का दिया बाबा ने बोलो, हिस्सा लेंगे जरा चर्चा में। पहला ज्ञान किसका दिया? आत्मा का। बोलो, कोई गहरा प्रश्न नहीं पूछा मैंने। दूसरा ज्ञान दिया परमात्मा का। तीसरा ज्ञान ब्रह्मा का। चौथा ज्ञान, आगे ज्ञान खत्म हो गया आपका। चौथा ज्ञान कर्मों का ज्ञान। पांचवा ज्ञान मुक्ति और जीवन मुक्ति का ज्ञान। छठा ज्ञान राजयोग का ज्ञान। और सातवा भी एक ज्ञान है, पूरे आठ कर देंगे तो अच्छा होगा। मुझे साथ ही याद आ रहे हैं, बताओ एक सातवा कौन सा? योग हो गया, तीनों लोकों का ज्ञान वो भी आ गया उसमें। ठीक है चलो, एक ये भी, चारों युगों का, ड्रामा का और तीनों लोकों का। अब आठवीं पॉइंट तो ठीक हो जाएगा, आठ संख्या हमारी उत्तम है। माया का ज्ञान दिया या नहीं? अब तक माया को माया समझ ही नहीं रहे थे, काम क्रोध को अपने मित्र समझ रहे थे, इनसे अच्छे मित्र कोई नहीं, यही तो जीवन है। बाबा ने उसकी बहुत अच्छी नॉलेज दी, तुम्हारा पतन कैसे हुआ, तुमने राजाई कैसे गंवाई और ये माया भिन्न भिन्न रूप से कैसे आती है। कल ही मेरे पास नीचे दो लोग आए, बड़े क्रोध आता है, कैसे छूटे, बड़ी पोस्ट पर है। मैंने पूछा करना पड़ता है या आता है, कहा करना भी पड़ता है। कहा वो तो शांत हो गया है, क्रोध से नुकसान क्या होता है? मैंने उनसे पूछा आपको होता है तो क्या नुकसान होता है? कहा मन अशांत रहता है, फिर घर जाते हैं बच्चे सब परिवार, मन अशांत है अपना, प्रेम नहीं, खुशी नहीं। तो बाबा ने ज्ञान दिया ना, ये शत्रु हैं, नहीं तो मनुष्य सोचता है रोब से तो रहना ही चाहिए, रोब से रहे बिना काम कैसे चलेगा, पर्सनालिटी है ये। आज भी एक मिलिट्री के बड़े ऑफिसर से हमको मिलने आए, कहा भाई मेरे में बहुत क्रोध था, बड़ी पोस्ट है, मिलिट्री में क्रोध करना पड़ता है, पर अब पता चला नहीं क्रोध तो शत्रु है। कहा बिना क्रोध के ही काम चलता है। तो रियल पर्सनालिटी क्रोध नहीं स्वमान है, रोग नहीं स्वमान है। ज्ञान दे दिया बाबा ने हम सबको माया का भी, तो तीनों लोकों का भी और ड्रामा का भी, आत्मा और परमात्मा का योग से जोड़ देंगे हम, और ड्रामा का ज्ञान चारों युगों का। अब देखो इसकी अथॉरिटी कैसे हम बनेंगे। हमें पता है, हमने सबने रोज सुना है, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। क्या हमें इसके बहुत अनुभव हुए हैं? अगर अनुभव हुए होंगे तो जब हम मुख से बोलेंगे घबराओ नहीं, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, तो दूसरे व्यक्ति का चित्त भी शांत हो जाएगा कि इसमें कल्याण होगा। और अगर हम ही परेशान रहे होंगे, बाबा की मुरली रिपीट कर दी, कल्याणकारी है ड्रामा, चिंता मत करो, और हमें चिंता होती है तो उसको भी चिंता होगी। एक पॉइंट, ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, इसलिए तुम साक्षी हो जाओ। बहुत बड़े अनुभव की बात, छोटी नहीं बहुत बड़ी। अगर हम इसके अनुभवी बने होंगे तो जब दूसरों को कहेंगे वो भी साक्षी हो जाएंगे। ज्ञान हम दूसरों को देते हैं, ज्ञान देने में आत्मा का, परमात्मा का, देवी देवताओं का ज्ञान, परम धाम का ज्ञान। अगर हमें इन चीजों के बहुत अच्छे अनुभव होंगे तो हमारे बाउल में पावर होगी। हम कहेंगे हम आत्माएं परम धाम से आई हैं, वहां शांति धाम है। कोई कहेगा देखा है क्या तुमने? हम कहेंगे देखा तो नहीं भाई, सुना है। पड़ेगा सर? अगर हम कहेंगे हम रोज अनुभव करते हैं परम धाम कैसे शांति धाम है, वो मुक्त अवस्था है हमारी, इस संसार में आने से पहले हम यही थे, अगर हमें अनुभव होगा तो कहते ही दूसरा व्यक्ति सहज मान लेगा। इसको बाबा ने कहा हुआ है, सार रूप में आपके सामने रख देता हूँ। अंतिम समय में जब जय जयकार होगी, एक मिनट में आत्मा का ज्ञान देंगे, एक मिनट में परमात्मा का, एक मिनट में योग सिखा देंगे, बस चलो हो गया काम। लेकिन ये कब होगा? ये सबसे नहीं होगा, ये उनसे होगा जिन्होंने तीनों स्वरूपों में स्वयं को स्थित किया। मैं आत्मा हूं, सोल कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ा दी है। जैसे ही दूसरों कहेंगे तुम आत्मा हो, यहां बैठी हो, ज्योति हो गई, बन जाओ आत्मा, हमें दृष्टि देते ही वो आत्मिक अनुभूति में आ जाएंगे। कोई डिबेट नहीं करेंगे मैं आत्मा हूं या नहीं हूं। क्लियर है ना बात? पर हम आत्मा कौन है, उससे हमारा क्या नाता है? हमने उससे नाता जोड़ा होगा, उसके स्वरूप पर हम बुद्धि स्थिर रखते होंगे, उसके मदद के, उसकी शक्तियों के हमें बहुत अनुभव होंगे। तो जैसे ही हम कहेंगे ये है परमात्मा निराकार, यहाँ रहता है, पूछेंगे नहीं सब जगह है क्या, ठीक है यही है, हो गया ज्ञान। तो ये जिनके पास अनुभवों की अथॉरिटी होगी ज्ञान की, वो सहज भाव से दूसरों को ज्ञान स्वीकार करा सकेंगे। जो टीचर बहने या गीता पाठशाला वाली माताएं कहती हैं, बहुत लोग ज्ञान लेने आते हैं, ठहरता कोई भी नहीं, कहती है ना दीदी, एक दीदी बैठी हमारे आगे, कहते हैं ना। फिर ये कहेंगे जो आता है वो बाबा का बन जाता है। ये होगा अनुभवों की अथॉरिटी का इफेक्ट, योग का अनुभव, वो तो सब जानते हैं। बाबा ने दो ही शब्द बोल दिए, योग युक्त और राजयुक्त। जो योग युक्त हैं वही सृष्टि के सारे रहस्यों को समझ सकते हैं। जो योग युक्त नहीं है मुरली से वो बातें कैच नहीं कर सकते। मैं एक बात बीच में जोड़ देता हूं, कैसे कैच नहीं करते, इसी ग्रुप में मेरे पास कई बहनें आ गई जिन्होंने कहा श्री कृष्ण का जन्म तो हो गया है। मैंने कहा कहां, नहीं गुप्त है। एक भाई नीचे तो बहुत कहता है श्री कृष्ण का जन्म हो गया है। मैंने उनसे पूछा ब्रह्मा बाबा की आत्मा वही श्री कृष्ण बनेंगे ना, श्री कृष्ण बनने से पहले उसके 100 साल का पाठ पूरा होना चाहिए या नहीं, या बीच में छोड़ के श्री कृष्ण बन जाएगा। पहले 100 साल जो उसकी आयु है, 100 साल जो उसको कार्य करना है वो पूर्ण करेंगे और फिर क्या होगा? नहीं, जन्म से पहले और कुछ होगा? नहीं, फिर परम धाम जाएंगे। जो कह रहे हैं श्री कृष्ण का जन्म हो गया, उनसे पूछना परम धाम गई ब्रह्मा की आत्मा, गेट खुला है? किसी के पास कोई उत्तर परम धाम का गेट खुल गया है? गया है कोई? अभी तो आ ही रहे हैं, वन वे ट्रैफिक है, वहां से डबल वे नहीं है, 4 लेन सड़क नहीं बनी है कि कई गाड़ियां चलती रहे। अभी कोई जा नहीं सकता, अभी आत्माएं आ रही हैं। तो पहले वहीं नहीं गए तो श्री कृष्ण कहां से आया? तीसरी बात, आप सबने सुना है मुरलियों में, देवताओं को पतित आंखों से नहीं देखा जा सकता। सुना है? सबकी पतित आंखें ही है ना, शरीर पतित है तो आंखें पतित हैं, भले ही हम अभ्यास अच्छे करते हैं। और पतित दुनिया में उस देवताओं के कदम नहीं पड़ते, ये भी सबने सुना होगा। श्री कृष्ण के बारे में जो सुंदर बातें सुनी हैं कि जब श्री कृष्ण की आत्मा परम धाम से नीचे उतरेगी तो चारों ओर लाइट ही लाइट हो जाएगी, और जो भी मनुष्य यहाँ रहेंगे सृष्टि पर उन सबको पता लग जाएगा कि फर्स्ट प्रिंस ने जन्म ले लिया है। अभी तो किसी को पता ही नहीं चला, या चल गए आपको? नहीं तो फोटो खींच के लाओ, कहाँ जन्म लिया। श्री कृष्ण वाला गुप्त रहेगा क्या? गुप्त रहने का पाठ तो शिव बाबा का है। एक और रहस्य बाबा ने कभी बताया था श्री कृष्ण के जन्म के लिए, सुन लो, आपको किसी को नहीं पता होगा, कि श्री कृष्ण के लिए दिखाया है वो अंगूठा चूसते हुए पीपल के पत्ते पर आया। वैसे तो हम इसको कैंसिल करते ही हैं कि भला पीपल के पत्ते पे श्री कृष्ण बड़ा शरीर कैसे हो गया, तो पीपल का पत्ता टीन का बना होगा बहुत भारी, वो तो अलग बात है। लेकिन इसका रहस्य बताया बाबा ने, क्या रहस्य बताया था मैंने अपने कानों से सुना हुआ है, कि जब विनाश होगा चारों ओर जल ही जल हो जाएगा, तो भारत की जो आकृति है वो पीपल के पत्ते की तरह रह जाएगी। अगर ऊपर से देखा जाए तो ऐसा दिखाई देगा पानी के ऊपर। हाँ माताओं, में मिस कर दिया तुमने, दोनों ने मिस कर दिया, क्या दिखाई देगा? कि पानी के ऊपर पीपल का पत्ता तैर रहा है, उस पे श्री कृष्ण की आत्मा जगमगाती हुई उतरेगी। इसलिए कहावत प्रसिद्ध हो गई, सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आया। क्लियर है? तो श्री कृष्ण ने जन्म नहीं लिया है। कई लोग कम बुद्धि के, मैं कम बुद्धि वाले कहूंगा उन्हें, सोचते हैं बाबा नहीं आ रहा तो जन्म ले लिया होगा कहीं। अरे उसके पतित माँ बाप वाला जन्म देंगे उसको कोई? यहाँ प्रकृति पावन चाहिए उसके लिए। और बड़ी बात, उसके फादर क्या होने चाहिए बोलो? माताओं से पूछ रहा हूँ, इन्हें तो पता ही नहीं। जैसे अरे कलश तुम्हारे पास है माताओं, श्री कृष्ण का बाप क्या होना चाहिए? भारत का अंतिम महाराजा, सम्राट। अभी तो सम्राट है ही नहीं। इसलिए इन सब रहस्यों को जानते हुए आप सभी भ्रमित कहीं न हो कि श्री कृष्ण आ गया है, अब पता नहीं क्या होगा। श्री करने से नहीं आता। देख लो मुरलियों से, मैं वहीं से बात शुरू की थी जहां मैंने कहा था कि योग से जिनकी बुद्धि पवित्र होगी वो राजों को समझ सकेंगे। साकार मुरली आप सुने ध्यान से, साकार मुरलियों में सब राज आते हैं। क्या राज आया? पहले सृष्टि का महाविनाश चलेगा, फिर प्रकृति शांत होगी, सब कुछ नॉर्मल होगा, फिर देवताओं का आगमन होगा। तीन तरह की आत्माएं यहां बचेंगी विनाश के बाद भी। एक वो आत्माएं जो अब उस परमधाम से आ रही हैं या और आगे आएंगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी आत्माएं हैं ना सतो प्रधान। दूसरे देवी देवताओं के माता पिता बनने वाली एडवांस पार्टी की आत्माएं, और तीसरे कुछ यहाँ के कलयुग के लोग जो सतयुग का स्थूल रूप में निर्माण करेंगे। ये तीन काम। इसलिए अभी देवताओं के जन्म लेने का समय नहीं आया है। या कोई जल्दी देवता बनना चाहता है आप में से? माताएं शरीर छोड़ के जाएं जल्दी देवता बन जाएं, ऐसा नहीं होगा। हर एक का एक समय है। तो योग युक्त आत्मा राजयुक्त होगी, जो ऐसा बोलते हैं ना, मैं उन्हें देखता हूं कि इनका कभी योग लगा है जिंदगी में या नहीं। योग की तो उन्हें भी तलाश ही है, योग के सुंदर अनुभव तो हैं ही नहीं। बिना योग के गहरे अनुभवों के बुद्धि पावन नहीं बनती, और सूक्ष्म बुद्धि बने बिना उसमें सृष्टि के राज समाते नहीं है, वरदान समाते नहीं है। इसलिए योग की हर स्थिति का अनुभव। उदाहरण के लिए कभी बाबा कह देते हैं मुझे मेरे घर में याद करो। सुनिए बात, सबने सुनी है? पीछे मुरली में कह दिया मैं ब्रह्मा तन में आता हूँ, मुझे याद करोगे तो इसका तन भी तो याद आएगा। सुनिए अभी 5-7 दिन पहले लोग कंफ्यूज होते हैं, परम धाम में करें या ब्रह्मा के तन में, बहुत कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देखो कैसे था, ठीक 6:15 बजे बाबा क्लास रूम में पहुंच जाते थे, उनके तन में शिव बाबा आते थे, तो हम सब जो बाहर रहते थे वो क्या देखते थे, क्या सोचते थे कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आ गए हैं, तो वहां याद करते थे उन्हें। लास्ट साल में बाबा की ये मुरली चली थी, मैं मधुबन में हूं मुझे यहां याद करो। क्यों? फिर तीसरी बात क्यों आई थी, बाबा एक बार मुंबई गए थे तो बाबा से किसी ने पूछा बाबा अब आपको मुंबई में याद करें, वे मधुबन में है तो यहाँ कहा, फिर कहा नहीं परमधाम में याद करो, मुझे मेरे घर में ही याद करो। तो जैसे जैसे आत्माएं सामने आती थी उस तरह के प्रश्न और उसके उत्तर होते थे। इसलिए याद हमें बाबा को करना है, शिव बाबा को, चाहे परमधाम में करें चाहे सूक्ष्म वतन में करें, और अब तो साकार तन की बात नहीं है, वो तो है ही नहीं यहाँ। लेकिन बाबा ने उसके लिए मधुबन के 4 धामों की यात्रा करना भी सिखा दिया था ना, याद है ना, सब करते हैं ना, नीचे आते हैं लोग तो मधुबन जाना है, क्यों जाना है, 4 धाम की यात्रा करने, एक ही उत्तर होता है सबका, 4 धाम की यात्रा करने के लिए मधुबन में जाना है। तो अथॉरिटी बनेंगे, योग की अथॉरिटी बहुत बड़ी चीज है, योग के हर स्वरूप का अनुभव। बाबा ने अब तक 25 तरीके सिखाए हैं योग के, उन सब का सुंदर अनुभव जीवन में हो जाए। सूक्ष्म लोक में बाबा से बातचीत भी, उससे संबंधों का रस भी, परमधाम में बीज रूप भी, इस तन में मैं अवतरित आत्मा हूँ सोल कॉन्शियसनेस की अलग अलग प्रैक्टिसेस भी, फरिश्ता स्वरूप भी, और सकाश देने की कई सारी विधियां भी, इन सब के सुंदर अनुभव हो जाएं। हमें अनुभव हो जाए कि किसी को भी हम सकाश देंगे उसका कल्याण होता है, किसी बीमार को हम सकाश देते हैं, उसके दुख दर्द कम होते हैं, ये हमें अनुभव हो जाएगा, तो इस अथॉरिटी के आधार पर हम किसी भी दुखी आत्मा के दुखों को हर सकेंगे। धारणाओं की अथॉरिटी, कौन सी धारणा इम्पोर्टेंट है जिनकी अथॉरिटी बनना चाहिए हमें? प्योरिटी तो है ही, उसके अलावा बताएंगे। प्योरिटी तो सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जो ब्राह्मण बहुत अच्छी तरह पवित्र बन गए, उनके बोल में भी अथॉरिटी रहती है, और वो बहुत ही नशे से दूसरों को कह सकते हैं हम पवित्र ब्राह्मण हैं, नहीं तो नहीं मुख से बोल निकलता। सूक्ष्म धारणा जिसकी अथॉरिटी हमें बनना है, संतुष्टता की बात तो की बाबा ने, मैं एक दूसरी भी कर रहा हूँ। ये संसार उलझा हुआ है दो चीजों में, बोलो कौन से? मैं और मेरा। जो इससे मुक्त हो जाएं वो अश्रतन, विजय रत्नों में भी सबसे आगे के रतन। इसमें संसार उलझा हुआ है, चाहे ब्राह्मण संसार हो चाहे लौकिक संसार हो, सब इसमें उलझे हुए हैं। ये मेरा है, ये मैंने किया है। मुझे बाबा की एक बात बहुत गहरी लगी और बहुत मजा आया उसको सुन के। बाबा ने कहा कि देखो ब्रह्मा, बाबा ने तो त्याग की बात थी उनके, अपने अधिकारों का भी त्याग कर दिया था, वो भी बच्चों को दे दिए। अब मैं तो इस चीज को जानता था, समझ में आ गई बात, कहीं अधिकार नहीं रखा। ये मेरा कमरा है ये भी नहीं, ये मेरी झोपड़ी है ये भी नहीं, ये मेरा यज्ञ है ये भी नहीं, मैं ज्ञान देता हूँ ये भी नहीं। जबकि सबसे बड़ा ज्ञानी कौन था? उससे बड़ा ज्ञानी, उससे बड़ा बुद्धिमान कोई होता ही नहीं चारों युगों में। लेकिन अपने को इतना त्याग से भरपूर कर दिया कि सब कुछ शिव बाबा सुना रहा है बच्चे। तो ये त्याग मैं और मेरेपन का, और जो ये त्याग नहीं करते, बोलो सुख संबात, जो ये त्याग नहीं करते उनके वाइब्रेशंस उस दायरे में ही घूमते हैं जिसको मेरा कहा है। समझ लें समझने वाले। और जो अपने वाइब्रेशन सारे संसार में फैलाना चाहते हैं, वो इस स्थिति में आ जाएं, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा, मैं तो विश्व कल्याणकारी हूं। तो सब अपने को चेक करेंगे, मेरे तेरे में, मैंपन और मेरेपन में हम उलझे हुए तो नहीं है। बहुत लोग उलझे हुए हैं, बहुत झंझट हैं, ये मेरा एरिया, इसमें तुम क्यों आए, सेवा नहीं कर रहे वहां, लेकिन दूसरे ने सेवा कर दी तो झंझट शुरू। इससे खुद का भी भाग्य कट रहा है और दूसरों को भी डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो इससे मुक्त होंगे हम, अपने को चेक कर लें, अपनी किसी गुण की, किसी विशेषता की, किसी योग्यता का मैंपन तो नहीं है बुद्धि में। मान लो मैं बहुत अच्छा भाषण करता हूँ, तो मुझे ये तो नहीं रहता मैं बहुत अच्छा भाषण करता हूँ करती हूँ, क्योंकि कराने वाला ऊपर बैठा है और ये अनुभव हो हमें, ये हमारी अनुभव की अथॉरिटी बन गया हो कि मैं नहीं वो, ये यज्ञ उसका है, मैं निमित्त हूँ, इसमें सेवाधारी हूँ, ये बहुत सुंदर अनुभव हो गए हों। और क्या अनुभव हो गए हों? यदि हम ऐसा मैंपन का त्याग करके ट्रस्टी बनकर रहते हैं तो क्या अनुभव हो जाएगा? देखो कौन उत्तर देता है, रमेश? ये अनुभव सबको हो जाने चाहिए, माताओं को भी, उनके भंडारे भरपूर। किसी भी फील्ड में मैं है तो सफलता भारी है। मैंपन का त्याग है, बाबा है, तो सफलता सरल है, सहज है, पीछे पीछे आएगी। इन सब के अनुभव बढ़ाने हैं। बाबा एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, बरसों भी कही, बाबा साथ है तो कठिन कार्य भी सरल हैं। अब बाबा साथ है ये बहुतों की समझ में नहीं आता, साथ है वो क्या इसका मतलब? हमें स्मृति रहती है कि बाबा मेरे साथ है, यदि ये स्मृति रहती है तो वो हमारे साथ है, और यदि विस्मृति हो गई तो वो साथ नहीं है। ठीक बात है ना, क्लियर है ना? और आगे चलें, एक छोटी सी बात और बड़ी सुंदर बात। बाबा ने कहा, बाप दादा का आह्वान किया करो। कई करते होंगे आप में से, कौन कौन करते हैं? बहुत करते हैं। जो करते हैं उनको अनुभव अवश्य होता है ना, तो अथॉरिटी हम बन जाते हैं कि कहीं भी कोई काम कठिन हो रहा था, हमने बाबा का आह्वान किया, सरल हो गया। कहीं मैं अकेली थी, मुझे डर लग रहा था, मैंने बाबा का आह्वान किया, चार लोग मेरी मदद के लिए आ गए। हो गया नहीं? ये अनुभव की अथॉरिटी हमें निश्चिंत करेगी। धारणाएं बहुत सारी हैं, हमें सरलता की धारणा के अनुभव भी बहुत अच्छे होने चाहिए। मन सरल तो कार्य सरल, मन सरल तो बीमारियां भी सरल, मन सरल तो समस्याएं भी सरल। इसको अथॉरिटी बनाओ सभी, इसके अनुभव करो। मन भारी, मन निगेटिव, बीमारियां बढ़ गई, भारी कर दिया। मन हल्का, सब कुछ हल्का। इसको अपने अनुभव में बहुत ज्यादा लाना है। लाएंगे तो ये होगी हमारी, और भी धारणाएं हम चर्चा करेंगे। गीत बजाओ भाई। चलो अब 10 मिनट और क्लास करेंगे, गीत के बाद उठेंगे नहीं। प्रेम से बस दो घड़ी, चलो बाबा को अर्पित कर दो अपने को।
भर ली
धारणाओं की तीन बातों और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। धारणा केवल गुणों की नहीं होती, धारणा का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। बाबा ने कहा, सारे बोझ मुझे अर्पित कर दो। अगली लाइन मैं बहुत सुनाता हूँ, सारे संसार के बोझ उठाने वाला बाप क्या? बोलो माताएं बोलो, अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा। भाई फैन चला देना जरा। अपने बच्चों का ये शब्द याद रखना, मेरा नहीं उठाएगा ये नहीं, उसके बच्चे हैं हम। इसके अनुभव प्राप्त करो कि बोझ बाबा को देने से क्या होता है। अनेक अनुभव होंगे। दूसरी धारणा, समर्पण भाव। अगर आप अपना सब कुछ समर्पित भाव से रखते हो, बाबा किसी का कोई लेगा नहीं। माताएं कर दें, जितनी भी ज्वेलरी अंदर रखी हुई है सब तेरी, कर दो अभी, कर दो आंख बंद करके, लेगा नहीं, आपसे डरना नहीं, केवल करना है। भावनात्मक परिवर्तन, मेरी है अब तेरी है, ठीक है या नहीं, देखना क्या होता है। तुरंत अनुभव होगा, एक हार की बजाय दो आ जाएंगे, एक अंगूठी की बजाय चार है। अलमारी खोल के देख लो, आज ही कर देना। भाइयों के पास भी माल बहुत तो वो भी करो, सब कुछ तेरा, समर्पण। तो बाबा की ओर से आवाज सुनाई देगी क्या, मेरा सब कुछ तेरा। ये नहीं कहेगा लाओ फिर, कहेगा मेरा सब कुछ तेरा। अनुभव करेंगे। तीसरी बहुत सुंदर बात, बाबा कहते हैं जो बच्चे अपने घर को बाबा का यज्ञ समझते हैं, वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं, उनके भंडारे और भंडारे भरपूर रहते हैं। अनुभव करने इसके, है ना, तीनों बातें बड़ी सुंदर, गुह्य और आनंदकारी। मेरा घर, मेरा घर नहीं, ये बच्चे मेरे नहीं, ये मकान मेरा नहीं, ये बिजनेस मेरा नहीं, ये सब बाबा का है। बिल्कुल डीप फीलिंग उसका है। तो हमारा घर हो जाएगा बाबा का यज्ञ, और उस यज्ञ से जो कुछ आप खाएंगे वो ब्रह्मा भोजन होगा, दुख भंजन भोजन होगा, और भंडारे भंडारे भरपूर रहेंगे। सेवा, सेवा की अथॉरिटी, सेवा तो सब कर रहे हैं। मैं कुछ सूक्ष्म बातों की ओर ले चलता हूँ आपको। सेवा सभी लोग कर रहे हैं, हर सेंटर पर हो रही। बाबा का हर बच्चा चाहता है वो खूब सेवा करे, तन मन धन से बोल से। सेवा यदि निष्काम भाव से की जाती है, सबसे बड़ी स्थिति है ये, निष्काम भाव से कर्म करना। नहीं तो धर्मशाला बना के बनने से पहले ही मार्बल तैयार रखते हैं, उस पे लिखा जाएगा फलाने सेठ ने, आजकल तो पंखों पे भी लिख देते हैं, तीन पंखड़ियों पे तीन बच्चों के नाम, ये उसकी ओर से भेंट सप्रेम भेंट, ये उसकी ओर से सप्रेम भेंट। पहले ही कामना रख ली, पंखे पर भी 300 रुपए का पंखा 100-100 में बांट दिया, तो वो 100 भी खत्म। तो कामना से अगर सेवा की जाती है, कोई सेवा इसलिए करते हैं हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा सेवा के नाम से, कोई सेवा इसलिए करते हैं हमारा नाम बहुत हो जाएगा, इससे सब लोग हमें जान जाएंगे, हमें बड़ा आदमी माना जाएगा, और बहुत सारी कामनाएं। संगम युग को वरदान है, जो जिस कामना से सेवा करता है उसकी वो कामना पूर्ण होती है। पैसा तो आ जाएगा, नाम भी हो जाएगा, लेकिन सेवा फलीभूत नहीं होगी। निष्काम भाव से सेवा, सबके कल्याणकारी भावना से सेवा करना, हमें सबको भगवान से मिलाना है, सबको शांति का मार्ग बताना है, खुशी का मार्ग बताना है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो दाता हैं। जो इस स्थिति से सेवा करते हैं उनके अनुभव कुछ और रहेंगे, तो अब इस स्थिति से सेवा करने के अनुभव बढ़ाने हैं। आपने यज्ञ में धन दान दिया, चार जगह वर्णन कर दिया, क्या हुआ? और आपने बिल्कुल जो कहावत है हिंदी में, एक हाथ दे दूसरे हाथ को पता न चले, इस ढंग से कर दिया, आपको कितना उसका बल मिलता है, कितनी बाबा की मदद आने लगती है, इसके अनुभव की अथॉरिटी बनना है। तो चारों सब्जेक्ट, सेवाओं की सफलता कहाँ हो रही है और कहाँ नहीं हो रही है, सेवाओं में यदि टकराव है तो उसका परिणाम क्या है, सेवाओं में यदि वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हैं उसका परिणाम क्या है, इस सब के अनुभव बहुत अच्छी तरह हो जाने चाहिए। टकराव के अनुभव अच्छी तरह करने की जरूरत नहीं, वो तो एक ही बार में हो जाते हैं, पर अगर किसी सेवा स्थान के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं, और आगे बढ़ें, सेवा करने वाली निमित्त आत्मा के वाइब्रेशंस, उनकी प्योरिटी, उनका योग, उनका निष्काम भाव यदि बहुत अच्छा है, तो सेवा का स्वरूप क्या है कि अच्छे अनुभव। जिस सेंटर पर वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं वहाँ सेवा किस तरह की हो रही है, और जहाँ सेवा स्थान पर टकराव है वहाँ सेवा कैसी हो रही है, दोनों चीज हमें दिखाई देंगी, तो हम उन चीजों को अपनाएंगे जिनसे बाबा का ये महान कार्य संपन्न हो, फलीभूत हो। तो हमें अथॉरिटी बनना है। और लास्ट बात आपको याद दिला दूं, कारण शब्द को, कारण कौन सा कारण, दो चार बताओ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो ठीक है, पर कारण प्रैक्टिकल में क्या होते हैं बताओ, हैं? ठीक है ठीक है, और प्रैक्टिकल बताओ, और प्रैक्टिकल, आज घर में मेहमान बहुत आए थे, सारा पुरसाद छूट गया, ये परिस्थिति बहुत आ गई थी, योग हुआ ही नहीं, तबीयत ठीक नहीं, सवेरे तो उठ ही नहीं सकते, फाइनल कर दिया है, तबीयत ठीक नहीं इसलिए सवेरे नहीं उठेंगे, पक्का कर दिया, स्टैंप 6 बजे ही उठेंगे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं, और बाबा ने क्या कहा, 4 बजे उठो तो तबीयत ठीक हो जाएगी, बाबा की आशीर्वाद मिलेगी, ऐसे कारण, किसी ने कुछ बोल दिया मेरी खुशी गुम हो गई, कारण, लोग मुझे बहुत बोलते हैं मुझे बहुत फीलिंग आती है, कारण, जिनको फीलिंग ज्यादा आती है उनके लिए बाबा भी इशारा करता है खूब बोलो इन्हें। परीक्षा हमारी बड़ी है क्योंकि पद भी बहुत बड़ा है या नहीं, IAS करना हो तो ऐसे ही बस पेपर दे के आ जाएंगे और डिग्री मिल जाएगी, बन जाएंगे कलेक्टर, मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन पेपर आएंगे, जिनको विश्व की बादशाही लेनी है उनके पेपर छोटे मोटे होंगे बड़े होंगे, इसलिए जिन माताओं को कष्ट होता है घरों में, माताओं को ज्यादा कष्ट होता है धारणाओं कारण, वो उसको कष्ट न मानकर पेपर माने और संकल्प करें उसमें मुझे अधिक से अधिक नंबर लेने हैं, तो हम कारणों को हटाएंगे। आज ठंड बहुत थी, सेंटर में गए नहीं, आज बारिश हो रही थी, अब रोज ही बारिश होने लगेगी तूफानी तो सेंटर जाना पूरा बंद हो जाएगा, लेकिन हमने ऐसी माताएं भी देखी, बारिश हो या तूफान, भीग भी रहे हो पहुंच जाती हैं माताएं, भाइयों की बात छोड़ो, तो ये दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो कुछ हम करना चाहें लास्ट बात सुनो, बोलो, हिस्सा लो। जो कुछ हम पवित्र आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान करना चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान हमारे साथ है। पक्का कर दो, हमें करने से कोई मायावी शक्ति रोक नहीं सकती। भगवान बहुत बड़ा है, माया तो कागज का शेर है, कुछ नहीं है। ये सर्वशक्तिमान साथ दे रहा हो तो कोई भी कार्य कठिन नहीं। तो कारणों को हटाएंगे। ओम शांति। बैठी रहेंगी, बैठे हैं तो एक बात और सुना दूं। कल मैं क्लास कराई नीचे, तो एक माता मेरे साथ साथ आ रही, भाई जी मुझे क्रोध बहुत आता था, काफी कम हो गया, लेकिन एक जगह बहुत आता है। मैंने कहा कहाँ? जब कोई मेरे सामने झूठ बोलता है। मैंने पूछा तो कि कलयुग का अंत है या सतयुग है? कलयुग का अंत है। तो मैंने कहा कलयुग के अंत में सत्यवादी हरिश्चंद्र कितने मिलेंगे आपको? मिलेंगे? क्यों परेशान होते हैं? ये भी कारण है ना, का क्रोध इसलिए आता है कि लोग झूठ बोलते हैं। अरे झूठ की तो दुनिया है ये। ओम शांति। हो गया भाई, चलो ओम शांति।